ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ षष्ठ स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 34। य प्राकृतेर ज्ञान पथेर जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा नील पार्थिवमाश्रितो गुणम् स ईश्वरो मे कुरुतां मनोरथम्। शब्दार्थ य प्राकृतेर ज्ञान पथे जो निम्न श्रेणी के पूजा मार्ग द्वारा जनानाम जीवों के यथा स्वयं उनके इच्छा के अनुसार देहगत विभाति उनके हृदय के अंदर दिखते हैं, जथा अनिलह जिस तरह वायु पार्थिवम पृथ्वी का आश्रित प्राप्त करते हुए गुणम गुण को स ईश्वर ओ भगवान को मैं मेरा कुरुताम मनोरथम मेरा मनोवांछा पूर्ण करने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जिस तरह वायु भौतिक तत्वों के विविध गुण तथा फूलों की गंध या वायु में धूल के मिश्रण से उत्पन्न विभिन्न रंग अपने साथ ले जाती है, उसी तरह भगवान मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार पूजा की निम्नतर प्रणालियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। यद्यपि वे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं अपने आदि रूप में नहीं, तो इन अन्य रूपों का क्या लाभ है। ऐसे आदि भगवान मेरी इच्छा पूर्ण करें। तात्पर्य, निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं कि विभिन्न देवता भगवान के रूप है। उदाहरणार्थ मायावादी पांच देवताओं पंचोपासना की पूजा करते हैं। वे वास्तव में भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते हैं, किंतु पूजा के निमित्त वे किसी रूप को ईश्वर मान लेते हैं। सामान्यतया वे विष्णु का रूप, शिव का रूप, गणेश, सूर्यदेव तथा दुर्गा के रूप में कल्पना करते हैं। यही पंचोपासना है। किंतु दक्ष किसी काल्पनिक रूप की नहीं अपितु भगवान कृष्ण के परम रूप की पूजा करना चाहते थे। इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान तथा एक सामान्य जीव के अंतर का वर्णन करते हैं। जैसा कि पिछले किसी श्लोक में इंगित किया जा चुका है, सर्वं पुमान वेद गुणाश्च संज्ञो न वेद सर्वज्ञ मनोन्तमीडे। सर्वशक्तिमान भगवान हर बात जानते हैं किंतु जीव वास्तव में भगवान को नहीं जानता। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ किंतु कोई भी मुझे नहीं जानता। भगवान का सामान्य जीव में यही अंतर है। श्रीमद् भागवत में एक स्तुति में महारानी कुंती कहती है, हे प्रभु, आप भीतर तथा बाहर विद्यमान है, फिर भी कोई आपको देख नहीं सकता। बद्ध आत्मा ज्ञान अथवा कल्पना से भगवान को नहीं समझ सकता, इसलिए मनुष्य को भगवत कृपा से भगवान को जानना चाहिए। वे अपने को प्रकट करते हैं किंतु वे कल्पना द्वारा नहीं समझे जा सकते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेसानुगृहीत ए बही जानाति तत्त्वं भगवत महिमनो नचास्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों की कृपा का लेश मात्र भी प्राप्त हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। पर जो लोग भगवान को समझने के लिए कल्पना करते हैं, वे आपको नहीं जान पाते। भले ही वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन क्यों ना करते रहे, यह शास्त्र का निर्णय है। एक सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक हो सकता है और यह कल्पना कर सकता है कि परम सत्य क्या है, उसका रूप क्या है और वह कहाँ पर विद्यमान है, किंतु वह इन सत्यों को समझ नहीं सकता। सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृत अधः। केवल भक्ति के द्वारा मनुष्य भगवान को समझ सकता है, इसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कही है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्त्वतः। एकमात्र भक्ति से भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। अज्ञानी लोग भगवान के रूप के विषय में कल्पना करना तथा उनके रूप को गढ़ना चाहते हैं, किंतु भक्तगण वास्तविक भगवान की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए दक्ष स्तुति करते हैं। कोई चाहे आपको साकार, निर्विशेष या काल्पनिक सोचे, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वास्तव में आप जिस रूप में है उसी रूप में दर्शन पाने की मेरी इच्छा पूरी करें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि यह श्लोक विशेषतया उन निर्विशेषवादियों के लिए है जो यह सोचते हैं कि वे स्वयं ब्रह्म है, क्योंकि जीव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। मायावादी दार्शनिक सोचता है कि केवल एक परम सत्य सत्य है और वह भी वही परम सत्य है, परंतु वह ज्ञान नहीं है अपितु मूर्खता है। और यह श्लोक विशेष रूप से ऐसे मूर्ख लोगों के निमित्त है जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। माया अपहृत ज्ञान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी मानिन लोग अपने को बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञानी होते हैं। इस श्लोक के विषय में श्री माध्वाचार्य कहते हैं, स्वदे हस्तंग हरि प्राहुर अधमा जीवे मेवतु मध्यमाचार्य निर्णितं जीवाद भिन्नं जनार्दनम। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, अधम, मध्यम तथा उत्तम। अधम सोचते हैं कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसकी कि जीव उपाधियों के अधीन है, जबकि परम ब्रह्म के कोई उपाधि नहीं होता। उनके मत में ज्यों ही भौतिक शरीर की उपाधियां विलीन हो जाती है, जीव ब्रह्म में मिल जाता है। वे घटाकाश पटाकाश का तर्क देते हैं, जिसमें शरीर की उपमा उस घट या बर्तन से दी जाती है जिसके भीतर तथा बाहर आकाश है। जब यह घट टूटता है तो भीतर का आकाश बाहरी आकाश से एकाकार हो जाता है। अतः निर्विशेषवादी कहते हैं कि जीव ब्रह्म से एकाकार हो गया है, यह उनका तर्क है। किंतु श्री माध्वाचार्य कहते हैं कि ऐसा तर्क अधम लोग प्रस्तुत करते हैं। दूसरे श्रेणी जो मध्यम लोग हैं, यह निश्चित नहीं कर पाते कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु वे मानते हैं कि ऐसा ब्रह्म है जो सामान्य जीव के कार्यों को नियंत्रण करता है। ऐसे दार्शनिक सामान्य माने जाते हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ वे है जो परमेश्वर को समझते हैं। सचिदानंद विग्रह पूर्णानंद गुणों की सर्वजीव विलक्षणम, उनका स्वरूप पूर्ण रूपण आध्यात्मिक आनंद से पूर्ण तथा बद्ध आत्मा का किसी अन्य जीव से सर्वथा भिन्न है। उत्तमास्तु हरिं प्राहुर्स्तारस्तभ्येन तेषु च, ऐसे दार्शनिक सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये जानते हैं कि भगवान विभिन्न भौतिक गुण वाले पूजकों के समक्ष भिन्न भिन्न रूप में अपने को प्रकट करते हैं। वे जानते हैं कि 3,30,00,000 देवता बद्धात्मा को यह आश्वस्त करने के लिए एक परम शक्ति है और वे उसे इनमें से किसी एक को देवता को पूजन के लिए प्रेरित करने के लिए हैं, जिससे वह भक्तों की संगति से यह समझ सकें कि कृष्ण भगवान है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, अहं आदिर ही देवानां, मैं सारे देवताओं का उद्गम हूँ, अहं सर्वस्य प्रभव, मैं सबसे यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं में भी श्रेष्ठ हूँ, ये सब शास्त्र के निष्कर्ष है और जो व्यक्ति इस निष्कर्षों को स्वीकार करता है उसे उच्च कोटि का दार्शनिक माना जाना चाहिए। ऐसा दार्शनिक जानता है कि भगवान देवताओं के स्वामी है। देव देवेश्वरं सूत्रमानंदं प्राणवेदिनः। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो प्रसंग अभी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रजापति दक्ष भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बड़े विशेष स्तुति, उस हंस की प्रार्थना कहा जाता है। इस स्तुति का अंतिम श्लोक ये है। अभी आप लोग लगभग 12 श्लोक चर्चा कर चुके हैं। तो इस श्लोक में प्रजापति दक्ष इस स्तुति के बाद भी भगवान प्रकट होंगे उनके सामने साक्षात। अघमर्षण क्षेत्र में जो स्तुति कर रहे थे, तो इस स्तुति में आज के श्लोक में वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस संसार में अनेक प्राणी, विशेष करके मनुष्य, दूसरे प्राणी तो आपको क्या समझे, उनकी चेतना के विकास ही नहीं है, लेकिन जो उन्नत मान के मनुष्य हैं, जितने हजारों प्रकार के मनुष्य हैं और जो भगवान के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, वो लोग अपने अपने भावनाओं, अपने अपने इच्छाओं, अपने अपने विचारों के अनुसार आपको उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। इसी को प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि भारतवर्ष में पंचो उपासना विधि प्रसिद्ध है। निर्विशेषवादी लोग पंचोपासना करते हैं, गणपत्य, सूर्य, देवी, विष्णु, शंकर, ये सब बोलते हैं, सब सब किसी की पूजा करो। एक्चुअली वो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, बोलते भगवान के रूप हो ही नहीं सकता, रूप जब होगा तो फिर भगवान हमारे जैसे हो जाएंगे। साउंड में प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, अभी ठीक है। हरे कृष्ण। तो बोलते हैं हमारे जैसे रूप भगवान का हो कैसे सकता है, भगवान हम लोग जैसे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा स्थिति को देख करके आपने जैसा भगवान को समझ कर, नहीं भगवान का रूप नहीं हो सकता। लेकिन भगवान को उपासना करने के लिए कुछ माध्यम तो चाहिए, जीरो को कुछ शून्य को तो उपासना नहीं कर सकते, तो इसे कल्पना कर लेते हैं किसी रूप को, इसे एक भगवत रूप को कल्पना करके वो कल्पना के अपने मनमानी ढंग से अपने करते हैं पूजा। लेकिन उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान उन्होंने कल्पना के हिसाब से उनके सामने प्रकट होते हैं, क्या करें। भगवान के सब तो भगवान के बेटे हैं ना, जो उनको माने जो उनको नहीं माने, सबके तो भगवान सबके हैं। तो नाना प्रकार के उपासक अपने अपने विचार, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने वासनाओं के अनुसार भगवान को उपासना करते हैं अलग अलग रूप में। प्रभुपाद जी तो उल्लेख करते हैं 33 करोड़ देवताओं के हिसाब से। अब भारतवर्ष में तो देखो पूरा 7 दिन किसी ना किसी का कोई व्रत होगा। हाँ, अभी मैं आ रहा था कल दिल्ली से, अब रास्ता आधा जाम कबाड़ वाले, अभी कबाड़ का सीजन चलना, कबाड़ ना काबड़ क्या बोलते हैं उसको, काबड़ा जो भी हो, तो सीजन चल रहा है उनका। अरे भैया आज से 20-25 साल पहले कुछ कबाड़ वबाड़ नहीं थे, आज तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हाल खराब, रास्ता में चलना मुश्किल होता है। हाँ, पंथ बढ़ते रहते हैं, उनका रंग रूप रस अलग अलग होता रहता है सब। अब ऐसे ही लोग अपना अपने हिसाब से कल्पना से अब बनाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भगवान जैसे भी रूप में उनका इच्छा के अनुसार फल प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। और उदाहरण देते हैं दक्षिणे कि जैसे वायु है, वायु उड़ता है, वायु चलता है, चलते समय नाना प्रकार स्थान से जाते समय में वायु प्रवाहित होते समय में कहीं फूलों के बागन के ऊपर जाता है, कभी कमल फूल के सरोवर के ऊपर जाता है, तो अलग अलग फूलों के सुरभि उसके गंध को धारण करके जाता है। तो ये फूल के गंध, नाना प्रकार फूल के गंध को फूल जब वायु ग्रहण करता है तो वायु भले प्रतीत होता है इसे सुगंधी या दुर्गंधी, तो इसमें वायु से कोई मतलब नहीं, फूल का है ये थोड़ी देर उनके साथ रहता है। जैसे केवल गंध को नहीं धारण करता है, कभी अलग अलग स्थान से वायु जब बहकर जाता है, कभी धूल के ऊपर जाता है तो धूल धूसरित दिखाई पड़ता है, कोयले के ऊपर जाता है तो काले काले दिखाई पड़ता है, तो इसे अलग अलग रंग और अलग अलग गंध के वायु दिखाई पड़ने पर भी ना तो वायु कोई गंधवान है ना रूपवान है, ये है नहीं, ये तो कणी कुछ से प्रभावित होकर। ठीक इसी प्रकार वायु बिल्कुल परे हैं, ये सब तो थोड़ी देर के लिए उनके संग के प्रभाव से दिखाई पड़ता है। ठीक इसी प्रकार भले नाना प्रकार के उपासक अपने अपने अलग अलग विचार और भावना के द्वारा भगवान की उपासना करे अपने अपने पंथ के अनुसार, भगवान उनको अपने अपने रूप से उनको इच्छित वस्तु उनको इच्छा पूर्ण करे, वो उनको माने, लेकिन फिर भी ना भगवान तो ऐसे ही रूप वाले है ही नहीं, भगवान सबसे परे हैं, भगवान बिल्कुल परे हैं। जो भगवान कैसे है ना, अपने मूल रूप में, अपने मूल सच्चिदानंद रूप में है, दक्ष इस बात को जानते हैं, इसलिए तो दक्ष हैं, इसलिए बोलते हैं प्रभु इस दुनिया वालों आपको भले अनेक अनेक प्रकार में कल्पना करके अनेक पूजा भी करते हैं, अपने अपने उपासना के फल भी प्राप्त भी भले कर लेते हैं, मानते हैं कुछ भी करें, लेकिन मैं जानता हूं आप इसी अलग अलग रूप वाले है ही नहीं, आप तो साक्षात परम शुद्ध सचिदानंद विग्रह है, बिल्कुल चिन्मय है, और मैं आपको इसी मूल रूप में आपके जो सचिदानंद रूप हैं उस रूप में मैं आपको दर्शन करना चाहता हूं, आप इसी रूप में मेरा मनोवांछा पूर्ण कीजिए, मैं आप इस मूल भगवान को पूजना चाहता हूं और उनसे बड़ा मनोवांछा पूर्ण करना चाहता हूं, ना कि अलग अलग अपना अपना उपासक के भावना विचारों के हिसाब से, नहीं, मैं जानता हूं आप ये सब नहीं, आप बिल्कुल उनसे परे हैं, यही बात है। जब इस प्रकार का कोई श्लोक आता है तो जो आचार्य गणों के ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल समाज में जितने प्रकार के भेजाल वस्तु है, सबसे ज्यादा भेजाल वस्तु है भगवान में, इस भगवत ज्ञान को सही सही प्राप्त करना समझो बड़ी सौभाग्य की बात, नहीं मिलता। भागवत को पढ़कर भी कई लोग भागवत कथाकार हैं, भागवत पढ़ते हैं, खूब बड़े ज्ञान रखते हैं, व्याकरण व्याकरण पढ़कर के बड़े पंडित भी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, बड़े चिंता करते हैं, चिंतन शक्ति हैं, बड़े बुद्धिशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन फिर भी भगवत ज्ञान को केवल ज्ञान से, अपने पंडिताई से, अपने दर्शन से नहीं जाना जा सकता। भले वो कितने कितने ऊपर में चल जाए, ब्रह्मा तक तो वहां तक कहते हैं ब्रह्मा जी, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम, बोले बड़े बड़े मुनि पुंगव भी आपने चिंतन की वेग के ऊपर, वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवान, पंथास्तु कोटि 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 वर्ष तक अगर चिंतन करते रहे, अपने मनन चिंतन के ऊपर में और आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, वहां से जाके जीरो वापस आएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको, आप नहीं जान सकता, समझ नहीं सकता। करोड़ों वर्षों तक अपने बुद्धि ज्ञान विवेक लगा करके नहीं समझ सकता, फिर कैसे आपको जानेगा, कैसे जान सकता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर रे कृपा लेस है छे जाहरे सही त ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। हे प्रभु, जिनको प्रसाद लेसानुगृहित वही जानात त्यक्तं भगवन महिमनम, आपके प्रसाद कृपा के लेस मात्र भी जिसको हो गया, थोड़ा बहुत कृपा आपके जिसका पर हो गया, वही थोड़ा बहुत आपको जान पाएगा। आपको तो पूरा पूरा कोई जान ही नहीं सकते, वो तो असंभव है, हम आशा भी नहीं करते। भगवान स्वयं भी कहते हैं, जब अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बताइए आपके बारे में, भगवान बोले मैं कैसे बता सकता हूं भैया, मेरे बारे में मैं भी बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी तू मेरे मित्र है, तू पूछ रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा जितने बता जा सकता है, ना तो ज्यादा सब समझ पाएगा ना मैं बोल पाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि अनंत है, अनंत को तो अंत किया नहीं जा सकता। बोले मैं कैसे लिमिट कर सकता हूं, मैं खुद ही अनंत हूं। तो भगवान को तो इसलिए जितने आपने शक्ति है, समझ है, इतने ही भगवान को समझा जा सकता, वो भी भगवान की कृपा के माध्यम से, और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो इसलिए प्रसाद लेसानुगृहित वही, आपके प्रसाद के लेस मात्र जिसका ऊपर हो गया, वही जाना जा सकता। सचमुच बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े सब हैं, लेकिन इस भागवत के जो असली रस तत्व को समझना लोग को हुआ, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने इसी के असली तत्व को निकाले। इसीलिए बड़े बड़े जो आचार्य हैं, उन्होंने कहते हैं भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। अगर भागवत को समझना चाहते हो तो ये बुद्धि दिमाग लगा करके सब व्याकरण सूत्र नहीं समझा सकता, भागवत जाकर पढ़ो। कहां पंडित के पास जाते हो? नहीं नहीं नहीं, पंडित से काम नहीं चले। कहां? कोई इस ग्रंथ भागवत को कोई व्यक्ति भागवत से पढ़ना होगा, वो भी एक भागवत होता है। कौन व्यक्ति भागवत? ना वो जो भागवत के हिसाब से जो अपने जीवन को जीता है, जो इस भागवत भगवान के निज जन है, उन्हीं के जो हो गया है ऐसे व्यक्ति, उनको व्यक्ति भागवत कहा गया है। उन्हीं के अधीनस्थ होन करके, उन्हीं के संरक्षण में, तत्वावधान में भागवत जाकर पढ़ो। वो केवल उनके तत्वावधान से पढ़ने से भी नहीं होगा, फिर एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण में आश्रय करो। एक शब्द लगा दे, एक अंत, एकांत आश्रय करो, ऐसे आश्रय कर लो नहीं चलेगा। एकांत शब्द का अर्थ है जिसका अंत एक हो, जिसका गोल ओनली वन, ऐसे नहीं ये भी ये भी ये भी वो बहुत सारे, नहीं नहीं नहीं, एक अंत, केवल और किसका नहीं, केवल ही केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुजाई होना पड़ेगा, उनके शरणाश्रित होना पड़ेगा। एकमात्र एक अंत एकांत आश्रय कर श्री चैतन्य चरणे, तब जाकर के भागवत तत्व समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं, नहीं तो ऐसे नहीं आता। तो इसलिए ये चक्रवर्ती पाद, ये चैतन्य महाप्रभु के एकांत आश्रय, वो जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भागवत रस को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि भगवान परमेश्वर और जीव वो दोनों हमेशा है, नित्य है, नित्य वस्तु दोनों है, और केवल दोनों ऐसे नहीं है, इतने संबंध है दोनों में। बोले क्या सखाय सौजा सखायाम, दोनों नित्य मित्र हैं, दोनों ही मित्र हैं, लेकिन गड़बड़ है, एक मित्र दूसरे मित्र को तो जानता है और दूसरा मित्र उसे कुछ नहीं जानता, वो नहीं जानता। यद्यपि दोनों साथ में हैं, एक साथ में रहते हैं और दोनों मित्र हैं, लेकिन एक मित्र दूसरे मित्र को जानता है, दूसरा नहीं जानता। इसी को भगवान कहते हैं, बोले मैं क्या करूं, मैं सब जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। वेदाहम समति तानी वर्तमानानि चार्जुन, अहम वेद मैं जानता हूं, क्या जानते हैं, सम अतीतानि, पूरा अतीत के बारे में, कंप्लीट अतीत के बारे में, सभी का अतीत मुझे पता है। वेदाहम सम अतीतानि वर्तमानानि, वर्तमान भी जानता हूं, भविष्याणि च, भविष्य भी जानता हूं, लेकिन गड़बड़े मांत वेतन कसन, मुझे कोई नहीं जानता, कोई मुझे, मैं सबको जानता। ये भगवान सर्वज्ञ और हम अल्पज्ञ, दोनों है, मित्र हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन ये दोनों की दशा है, एक महा अल्पज्ञ है और एक सर्वज्ञ है, एक साथ में, उन्हीं के ऊपर टिक करके हम जो कुछ कर पाते हैं उन्हीं से लेकर करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हरि विमुख हो गए, उनसे विमुख हो करके पड़े। जिस समय जिस क्षण उनके सम्मुख हो जाएं तो दिखाई पड़े, वो जान जाएंगे, जितने आपको जानने का जरूरी है वो जान जाओगे, लेकिन अभी हम हरि से विमुख होकर जगत उन्मुख हुए, जगत की ओर मुंह मुड़े देख रहे हैं, इसलिए उनको समझ नहीं पाते। जब तक यहां से विमुख होकर के उनके ओर मुख करेंगे तब जाकर के उनको जान सकते हैं, तब तक नहीं जान सकते हैं। तो बोलते हैं यदि भी दोनों सखा हैं, नित्य हैं, तभी भी उनके ही दशा है, नहीं जान पाता, समझ नहीं पाता, और समझ भी नहीं पाता, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के कल्पना भी करता रहता है, लेकिन कितने कुछ कल्पना करे, कुछ भी करे, ये सबसे पढ़ करके फंसने से नहीं होगा। माधवाचार्य तो यहां तक कहते हैं, क्योंकि आज तक भारतवर्ष में बड़े बड़े जो आध्यात्मवादी हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो समझना चाहते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उन लोक में भी इतने प्रकार के विषम समझता है, इतने विषमता है, अब क्या कहें। बड़े बड़े पंडित संप्रदाय के संप्रदाय है, महावैरागी है, महात्यागी तपस्वी हैं, लेकिन उनका भी कहना बिल्कुल दूसरे, वो तो कहते हैं, बड़े बड़े त्यागी कहते हैं कि नहीं, जीव ईश्वर एक ही है, एक ही है, वो भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म हैं, केवल हम थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा उपाधि ग्रस्त हैं, और उपाधि नहीं है, जिस दिन उपाधि कट जाएगा हम नरो नारायण भवत खत्म होंगे, हम तो अलग थोड़ी है। और उदाहरण देते बोले घटाकाश पटाकाश, घट मतलब एक बर्तन है, एक बर्तन है मटका, उसका अंदर भी हलो आकाश है, बाहर भी आकाश है, लेकिन ये बर्तन एक कवर है ना मिट्टी का, वो एक कवर है, लिखने से कवर हुआ आकाश, कवर कर, जिस दिन ये बर्तन टूट जाएगा, कवरिंग टूट जाएगा, आकाश है, आकाश एक आकार हो जाए मिट्टी। माधवाचार्य कहते हैं इसी प्रकार के विचार सबसे घटिया, एक बार निम्न कोटि के लोगों का दर्शन विचार है, वो नहीं जानते हैं। इस प्रकार के कितने सोच विचार लगा नहीं जान सकते, और कुछ विचारे मध्यम कोटि के हैं, वो तो बिल्कुल बहुत बुद्धि दौड़ा कर तो नहीं समझा नहीं जा सकता, छोड़ो पता नहीं है तो है कि नहीं है, कुछ है तो जरूर, ऊपर वाला तो है, नहीं तो काम कैसे, कोई तो है लेकिन कैसे ही है नहीं पता, लेकिन है ये नहीं जान पाते कैसा, यही दशा ये मध्यम कोटि के है, कम से कम मानता है तो गड़बड़ तो नहीं करता। इसी को भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट है वो वेद शास्त्र पढ़े नहीं है, वेद को मानते ही नहीं हो,
उनको वैदिक ज्ञान फान है ही नहीं उनके पास, लेकिन वो बुद्ध को मानते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, ईश्वर के अवतार बुद्ध को मानते हैं। भगवान कहते हैं वेद नमानिया बहुध हैला नास्तिक, बोले वेद को नहीं मानते इसलिए नास्तिक हैं। नास्तिक होने पर भी फिर भी ठीक ठाक है मिडिल कोटि के, लेकिन वेद शास्त्र को मान करके जो भगवान को माया करके मानते ये ताते अधिक, वो तो बौद्ध से भी और गिरे हुए हैं, खतरनाक है। वेद शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान के रूप गुण लीला का खूब वर्णन करते हैं पढ़ते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं जीरो, वो है ही नहीं निराकार निर्गुण। बोलते हैं कि ये कृष्ण के अपराधी हैं। नहीं, भगवान के कितने सुंदर सचिदानंद, अब क्या करें, भगवान भी तो ऐसे ही है, निर्विशेष सविशेष दोनों ही भगवान के रूप है, भगवान है ही दोनों प्रकार के, वो कहते भी हैं। बोलते हाँ जो इस रूप में करे थोड़ा तकलीफ होगा वो भी आएंगे मेरा पास, क्योंकि ब्रह्मज्योति में जाएंगे वो, भगवान दोनों तरफ कहते हैं। तो इतने कंफ्यूजन में डाल देते हैं, अभी तक कोई नहीं समझ पाता उनको अभी तक। अब बाकी दुनिया के दूसरी बात में क्या कहें, जो तो बिल्कुल भौतिकता लिप्त हैं, एक ही भारतवर्ष है जहां पर इस प्रकार के विचार विमर्श होता है, यहां पर भी नाना मुनि नाना मत, समझ में नहीं आता। तो इसलिए केवल जो भक्तगण हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग जैसे हैं, तो कोई लोग मानते हैं कि भाई ये लाइट है, लाइट जो है ना उसी को देखो ध्यान करो, ज्योति है, लाइट ही सब कुछ है, ज्योति है। अरे भाई लाइट है, लाइट के पीछे कुछ हुआ, लाइट कैसे आ गया, लाइट का कुछ आधार होगा ना, वो नहीं जानते। नहीं, लाइट की लाइट तो है, और लाइट के आधार को नहीं मानते, और कुछ वो तो निम्न कोटि के हो गए, वो बोलेंगे लाइट का तो आधार ना, आधार तो होना चाहिए, कुछ लोग आधार होना, वो कैसा वो पता नहीं, वो पता नहीं कैसा है। लेकिन वास्तव में जो जानकारी हो, जो मानते भगवान को भगवान रूप में, वो भक्तगण है। वो कोई जैसे कोई निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करे, ज्योति के रूप में करे, और उससे बढ़कर के परमात्मावादी योगी लोग जो अपने हृदय में भगवान को अनुभव करते हैं, भगवान की उपस्थिति, लेकिन उनसे भी वो सबसे उत्तम कोटि के हैं, जो भगवान के मधुर मधुर लीला और गुण के बारे में सुन करके इतने आकर्षित हो जाते हैं, फिर भक्ति के द्वारा भगवान को हृदय में मनन करके, चिंतन करके, बाहर में अपने इंद्रियों के द्वारा अपने आंखों से देखना चाहते हैं उस रूप को, उस हाथों के द्वारा उनको माला पहनाना चाहते हैं, मुंह के द्वारा उनके गुणगान करना चाहते हैं, ये केवल भक्त ही करते हैं। भक्त बोलते हैं ऐसा नहीं चुपचाप, ना ना ना, हम हमारे प्रभु को सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे, पहनाएंगे, नहलाएंगे, उनको देखेंगे, उनको गुणगान करेंगे, ये है भक्त। ये केवल भक्ति के, शुद्ध भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। और लेकिन कोई किसी प्रकार करें, ये भक्ति के द्वारा वो बड़े सुलभ है। भगवान कहते भी हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यास्मि तत्ततः, अब केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, बाकी किसी के द्वारा है नहीं। लेकिन असली में भगवान कैसे है ना, भले कोई लाखों लोग लाखों प्रकार से उनको बोले, सोचे, जाने, कुछ भी करे, लेकिन वो सबसे परे हैं, कंप्लीट चिन्मय वस्तु, परम शुद्ध वस्तु हैं। उनको तो केवल उनके कृपा से, विशुद्ध भक्ति योग के द्वारा, उनके सेवा के द्वारा कोई उनको थोड़े बहुत समझ सकता है और अनुभव भी कर सकता है। यही इसको समझा जाता है। और दक्ष इसी प्रकार से कहते हैं, प्रभु मैं इसी प्रकार से आपको अपने मूल स्वरूप में जानना चाहता हूं, मुझे आपने इसी में दर्शन देकर मेरे मनोवांछा पूर्ण कीजिए, क्या मनोवांछा जो भी है उनको पूर्ण कीजिए उस प्रकार से। यहां तक कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं थे, जब स्वयं श्रीमन महाप्रभु परमेश्वर भगवान स्वयं अपने शरीर में विद्यमान थे, उन्होंने एक बार दक्षिण भारत में गए थे, दक्षिण भारत में सारे आचार्यों के स्थान है, एक से एक बढ़कर विद्वान भक्त सब हैं वहां। वहां पर जब उन्हें चतुर्मास के समय विराजमान करते थे श्री श्री रंग क्षेत्र में दोनों तरफ कावरी बहता है और बीच में श्री रंगनाथ जी के विशाल मंदिर है, वहाँ पर महाप्रभु ने चतुर्मास की शुरुआत में पहुँचे थे और वहाँ श्री रंग भगवान के दर्शन करके नृत्य किए थे पूर्णिमा के दिन। और आषाढ़ी पूर्णिमा को जो वहाँ नृत्य कीर्तन किए और लोगों का जो रंग दर्शन के लिए भीड़ आया था और रंगनाथ जी के दर्शन में भीड़ ने नहीं गया उनको देखने के लिए, सारे महाप्रभु के दर्शन कर रहे थे क्योंकि ये सोने वाले भगवान, ये नाचने वाले भगवान, किसी को पसंद करेंगे अपने जो नाच रहे हो तो सो रहे। यहां तक कि जो पुजारी था वो भी आरती करते करते आंगन में नाचने वाले भगवान को देखा है कि आज को लोग है ही नहीं, इतनी भीड़ है, कोई मंदिर के सामने कोई नहीं आता। तो भगवान तो यहां रहे, वो जो मुख्य पुजारी वेंकट भट्ट उनको अंत में उनके घर में निमंत्रण किए प्रसाद के लिए और उनको अनुरोध किए कि चतुर्मास है आप तो भ्रमण नहीं करेंगे, क्यों नहीं यहाँ रुक जाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके निमंत्रण स्वीकार करके उनके घर में 4 महीना रुके। 4 महीने श्री वेंकट भट्ट जो रंगनाथ जी के हेड पुजारी थे उनके घर में रुके और उनके एक भाई थे जिनका नाम था परिमल भट्ट, जो बाद में गोड़िये हो गए प्रभुआनंद सरस्वती पाद बन गए, वो भी उनके भाई थे वेंकट भट्ट के और उन्होंने श्री संप्रदाय में संन्यास ग्रहण कर चुके थे, सन्यासी थे, इतने बड़े वैरागी त्यागी महात्मा थे ये दो भाई, इतने बड़े बड़े थे, ये तो हेड पुजारी थे रंगनाथ जी के, कितने बड़े पहुंचे हुए यहाँ के जाने माने, और उनके भाई एक सन्यासी थे श्री संप्रदाय में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो रुकते थे उनका तो कुछ क्या दिन भर टाइम पास कैसे करें, सुबह उठ करके कावेरी स्नान करते थे, स्नान करके आकर अंग मंदिर में खूब नृत्य कीर्तन करते थे कई घंटों तक नृत्य कीर्तन, ये है पहला बंधन पूजन के बाद वही करते थे, करने के बाद वापस आते चतुर्मास में नियम सुबह दिन में एक बार खाते थे, दोपहर में भोजन लेते थे, दोपहर में भोजन लेकर के थोड़ा विश्राम करने के बाद अब दोपहर के बाद उठते थे, बाकी क्या करें, दोपहर के बाद शाम तक जब तक सरकारी लाइट अवेलेबल है मतलब सूरज जब तक दिखाई पड़ रहा है, तब तो इलेक्ट्रिक लाइट था नहीं, तब तक क्लास चलता था एवरी डे आफ्टरनून क्लास। महाप्रभु के समय में ये मॉर्निंग क्लास नहीं हुआ करता था क्योंकि उस समय वो इलेक्ट्रिक लाइट पंखा व्यवस्था तो था नहीं, आज 5 साल पहले जितने सब साधक होते थे सुबह मतलब वो 4 बजे 3 बजे उठकर कोई अटैच बाथरूम नहीं हुआ करता था, 3 बजे उठकर के स्नान कोई नहीं कर, संभव ही नहीं है, और 3 बजे उठकर के नदी तालाब में कोई जा नहीं सकते हैं इतने अंधकार में, जब तक 5 बजे थोड़ा दिखाई ना पड़ जाए तब तक कैसे जाएं, क्योंकि टॉयलेट भी बाहर जाना है, स्नान भी बाहर करना है, दंतन फातन सब बाहर करना है, सब कुछ ब्रश पेस्ट ये सब नहीं हुआ करता था। तो इसलिए लगभग 5:30-6 बजे तक तो स्नान टान करके आते थे और अपने निज अपने साधना करते थे बैठ करके, तो कम से कम साधना करने में उनको कई समय लगता था, साधना करने के बाद फिर जाते थे जो निकटस्थ एक विष्णु मंदिर होता था वहां दर्शन करने जाते थे, दर्शन करके थोड़ा कीर्तन वर्तन करके आते थे, आ करके दोपहर के भोजन तक उनके साधना चलता था, दोपहर तक अपना साधना करते थे, भोजन पाकर थोड़ा विश्राम करके दोपहर के बाद क्लास हुआ करता था कंटिन्यूस शाम तक, ये उनका दैनिक जीवन हुआ करता था। दोपहर के बाद चैतन्य महाप्रभु जहाँ वेंकट भट्ट के घर में थे तो क्लास लेते थे, लेकिन क्लास लेते थे कौन, श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं। अब वो जब बोलेंगे आप अंदाज लगाओ, जब भगवान स्वयं अपने बारे में बताएं, अब सुनने वाले एक से श्री संप्रदाय के वैष्णव ब्राह्मण पुजारी जितने कॉलोनी की कॉलोनी सब आ जाते थे, हजारों की भीड़ जुट गया क्योंकि वो अरे गरे वक्ता तो था नहीं, साक्षात भगवान है, और सारे ब्राह्मण लोग आकर के बोले ये बड़े पंडित ये लोग ये कैसे आ गए ना, उनके निमंत्रण के भोजन के लिए उनका घर, तो बोले अरे हमारे घर में एक दिन प्रसाद पाते, सारे ब्राह्मण आकर के प्रणाम करके प्रभु हमारे घर में एक दिन प्रसाद के लिए कृपा करे हम, और कम से कम 5,000 ब्राह्मण सेवक थे रंगनाथ जी के, सब आकर निमंत्रण कर बड़े, भगवान बोले मुझे तो रहना है 4 महीना, 4 महीने में कितना दिन होता है, अरे 120 दिन होता है, 120 दिन मुझे रहना है और 5000 लोगों के घर में खाऊंगा, दिन में एक बार तो खाना है। अब मुझे 5000 दिन रहना पड़ेगा, तो पूछा गया इधर कैसे रहूं कितने साल? भैया हो नहीं सकता। नहीं नहीं ऐसा मत, कृपा कीजिए, पार्शियलिटी मत कीजिए भैया। अब इतने प्रार्थना करते थे तो भगवान सबके प्रार्थना स्वीकार करने के लिए बोलते, ऐसा करो अब 100-200 मिल करके एक दिन में किसी का घर में प्रसाद बनाओ, होलसेल में एक दिन में प्रसाद, 200 का प्रसाद एक दिन में पालूंगा। हाँ थोड़ा थोड़ा आइटम में बना बना कर तो और क्या करूँ, एक एक इंडिविजुअल करके घर में तो जा नहीं सकता। तो इसे मिल मिल करके 50-100 ब्राह्मण मिल करके एक दिन किसके यहाँ प्रसाद बनाएंगे, महाप्रभु ही प्रसाद पाते थे क्योंकि सबका मन वांछा रखना था। तो सभी लोग आते थे महाप्रभु से प्रसाद की बात सुनने के लिए, क्योंकि जब भगवान स्वयं भगवान अपने बारे में बोलेंगे अब तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं बोलेंगे, अब भगवान एक्चुअली यहाँ रुके थे, उनका कोई किसी का घर में रुकने का तो ऐसे था नहीं प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ इसीलिए जानबूझ के रुक गए क्योंकि वहाँ नि भक्त प्रोग्राम करना था। उनको एक भक्त मिल गया था गोपाल भक्त करके, उसका ट्रेनिंग चल रहा था तो इसलिए 4 महीना ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे थे वहाँ। तो जो भी हो तो वहाँ क्लास लेते थे, तो क्लास लेते थे तो क्लास में सब सीरियसली सुनते थे। अब श्रीमन महाप्रभु बोलते बोलते देखे जितने वैष्णव बैठे हैं उसमें हेड ये सन्यासी बैठे हैं, उनके भाई साहब बैठे हैं हेड पुजारी, लेकिन ये सारे कट्टर कट्टरपंथी नारायण भक्त हैं, सब उनके उपासक इष्ट देव लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण उनके उपासक है और उनका महामंत्र नमो नारायण, ओम नमो नारायण, यही मंत्र बोल नारायण सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण को नहीं मानते, वो कृष्ण को नहीं मानते। अब भगवान तो साक्षात कृष्ण है, बोले मैं स्वयं क्लास दूंगा और कृष्ण के बारे में नहीं जान पाएंगे तो फिर मतलब क्या रहा, ये 4 महीना कोर्स करूंगा और कृष्ण के बारे में उनको पता नहीं चलेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कोर्स में है ही नहीं कृष्ण का। ये सारे तो नारायण क्षेत्र है, सदा नारायण के फॉलोअर सारे क्लास में बैठे, ये क्षेत्र गांव जैसा है, स्टूडेंट जैसा, सबक जैसा, सब नारायण के पार्टी के, वो मैं रहा केवल कृष्ण फॉलोअर, उनको कैसे बताऊं कृष्ण के फॉलोअर नहीं कृष्ण ही हूं। तो भगवान ने एक दिन मजाक में, ऐसे ही मजाक में बोलते बोलते क्लास में बोले, अजी भट्ट जी आपके जो नारायण है आपको तो सर्वश्रेष्ठ इष्ट है, हाँ हाँ, लेकिन उनके श्रीमती जी भगवती लक्ष्मी उनके न क्या हो गया ना, मैंने इसे सुना हूं कि लक्ष्मी हमारे इष्ट देव कृष्ण के पास आ जाते हैं। तो भट्ट खड़ा हुआ, ऐसा क्यों आशंका करते हैं, ऐसे दोष दृष्टि करते हैं, भगवती लक्ष्मी पतिव्रता शिरोमणि है उनके ऊपर आप दोष दृष्टि करते? नहीं नहीं दोष दृष्टि नहीं है, लेकिन यही मैं जानना चाह रहा था आप क्या, आपका मतामत क्या है? नहीं नहीं, अरे नारायण और कृष्ण में अंतर क्या है, दोनों तो एक ही है, दोनों व्यक्ति एक ही है। और जब नारायण के पास कभी रहती कभी कृष्ण के पास आ जाती, तो व्यक्ति जब एक ही है तो उनके पतिव्रता में कहां चाहेगा नहीं, क्या फर्क पड़ता। जब ये उत्तर भट्ट महाशय बोले तो श्रीमन महाप्रभु बोले, हाँ हाँ बिल्कुल सत्य की आपका कथा मैं मानता हूँ, शास्त्र अनुसार तत्वतः दोनों तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ जब दोनों व्यक्ति एक ही है और एक पत्नी चाहे ए रूम में जाए चाहे ए रूम में रहे कहीं आए, लेकिन जो हमारे इष्ट देव हैं ग्वाला कृष्ण है, उनका जितने गर्लफ्रेंड है उनके जितने प्रेसी हैं गोपियां, वो भाई जब व्यक्ति एक ही एकाध बार दूसरे कमरे में चले जाए, नारायण के पास कभी नहीं गए, जब वो दोनों व्यक्ति एक ही है वो भी इधर आती है तो वो भी इधर भी कभी कभी जाने चाहिए, तो वो क्यों नहीं जाते हैं कभी कभी? फंस गए भट्ट जी, बोले ये तो बात है, वो कभी नहीं आते हमारे ग्वालिन गोपिकाएं वैकुंठ में कभी गए नहीं, कभी नहीं गए, कभी जाना भी नहीं चाहती। और वो वैकुंठ के इतने ऐश्वर्यशाली सिटी लाइफ को छोड़कर गांव में ये जो कंडा गोबर था अपना, बोले यहाँ क्यों आती? भट्ट जी बोले अब पता नहीं। बोले आप ये भी सुने होंगे कि एक बार ऐसे हुआ, भगवान ने रास अंतर्धान हुए थे और ऐसे नारायण रूप ले लिए कृष्ण ने, चतुर्भुज होकर नारायण रूप होकर खड़े हो गए और सारे गोपिकाएं ढूंढ रहे हैं कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ, देखे एक पेड़ के नीचे कृष्ण नारायण रूप में खड़े हैं, सारे गोपिकाएं गए बोले नारायण जी प्रणाम, अब देखे हैं हमारे कृष्ण कहाँ गए, अरे वो कृष्ण ही थे, मेकअप किए हैं कभी दो 4 हाथ में, लेकिन उनको प्रणाम करके उनसे बातचीत आगे चले आगे बढ़ गए। कृष्ण के ढूंढ रहे हैं, वो कृष्ण ही है, लेकिन चार भुजा किए करके उनको प्रणाम करके आगे चल गए, कोई उनके प्रति ध्यान नहीं दिया। जब कृष्ण वो तो वैकुंठ जाते नहीं, यदि वैकुंठ के रूप भी कभी धारण करते हैं वृंदावन में तो उनको कभी देखते नहीं, बातचीत नहीं करते, हाँ ठीक है आप चलिए, प्रणाम करके चले जाते हैं आगे। और आपके वैकुंठ के अधीश्वरी भगवती लक्ष्मी सौभाग्य के गणेश उनके देवी, वो वैकुंठ आदि छोड़ करके इस वृंदावन में जहाँ धूल गोमूत्र गोबर कोई अच्छा घर नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सुबह यहाँ आती है, वो आकर भी अभी तक घुस नहीं सका, अभी तप का तपस्या कर रही है अंदर आने के लिए। ऐसा क्यों? जब बोलते हैं दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों है तो बराबर आना जाना चाहिए, चाहे यहाँ रहो चाहे यहाँ, जब बातें की आप सारे भट्ट जी और जितने उनके फॉलोअर थे सारे सीरियस, बोले बात तो सही है, जो दोनों व्यक्ति है दोनों कमरा एक ही है, कोई इधर आ जाए कभी इधर आ जाए, लेकिन ये कभी नहीं आते और वो हमेशा आकर ही बैठी है और कभी जाते ही नहीं। आप निरुत्तर हो गए। अब बोले बताइए क्या कारण है? हम अपने लक्ष्मी जी के सतीत्व के पतित्व ऊपर हम आंच नहीं लगाते, लेकिन जो हम ये बात सही है ना, हाँ हम तो इसे सुने हैं, लेकिन ये पता नहीं इसका कारण पता नहीं क्या है। अब चुप हो गए, बोले हम क्या कर सकते, हम पता है कि लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर आके वृंदावन में आना चाहती है और प्रयास करती है, और वृंदावन के कोई भी एक बार भी नहीं गए वहां। अरे भाई जाना चाहिए, ये गाँव है सिटी है, जाना चाहिए, कदर कभी नहीं गए, बुलाने पर भी नहीं जाते। जब कुछ नहीं बोल पाए तो महाप्रभु हंसते हंसते बोले और कोई कारण नहीं है, यद्यपि तत्वतः दोनों सेम है, दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी लीला और रस की दृष्टि से कृष्ण कृष्ण है, सर्वाकर्षक है, सर्व गुणगण धाम है, इसलिए भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण को भी आकर्षित करके ले आते हैं वहां, लेकिन उनको कोई आकर्षण नहीं। यहाँ के जो कृष्ण के प्रति आकर्षित है फिर वो किसके प्रति नहीं है, क्योंकि पूर्ण है, ये कंप्लीट है। इस प्रकार के उनको समझा पड़े, उनको मानना पड़ा। तो इस प्रकार के जो भगवान के कृष्ण के वास्तविक तत्व ज्ञान वो कैसे है, किस प्रकार जाने, इस प्रकार जानने के लिए तो एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित होना पड़ेगा, उनके अनुयायी होना पड़ेगा, तब ये भागवत के जो सिद्धांत है वो जाकर खुलेगा आपके पास में। इसलिए कहा गया कि एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित होकर के उनके अनुयायी बन करके अगर उपासना करें पूर्ण विश्वास के साथ ये साधना करें तो भगवत कृपा से ही उस भक्ति के माध्यम से ही हम केवल समझ नहीं पाएंगे, इस चर्म चक्षु से उन भगवत रूप को देखेंगे, अनुभव करेंगे, आनंदित होंगे, और केवल चक्षु से देखेंगे नहीं, उनके गुणगान करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे और स्वयं खाएंगे भी। बताओ ये है भक्ति? अरे भक्ति के मस्ती के छोड़ करके कहां जाए ये तप करने के लिए? तो ही है दक्ष प्रजापति आज इस अघमर्षण क्षेत्र में तप करते करते अंत में उनको पूरे स्तुति करते करते समझ में आ रहा है, हे प्रभु आप मूल रूप में जब तभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे जब भक्ति कर पाऊं। तो इस मूल रूप को जानने के लिए भक्ति ही एकमात्र आवश्यकता है। तो इस भक्ति के स्तर पर जब वो आकर के प्रार्थना किए तो भगवान प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। तो ही सिद्धांत है। तो जब भी कोई भगवान को जानना चाहता है, अनुभव करना चाहता है कुछ भी प्रकार से, तो एकमात्र माध्यम है भगवत भक्ति। वो पूर्ण विश्वास के साथ अगर करें, अभी हम अशुद्ध अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे जितने जितने शुद्धता होगा इस परिमाण में इस अनुपात में हम अनुभव कर पाएंगे। भक्तों की संग में रह करके, भक्तों के संरक्षण में रह करके, श्रीमद महाप्रभु के अनुयायी बन करके, भागवत के अनुसरण के द्वारा इस प्रकार जो भक्ति का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जितने ही परिमाण में अभ्यास करेंगे विश्वास के साथ, इतने अनुपात में उनके अनुभव और अनुगम कर पाएंगे। भगवान कृष्णचंद्र की, समवेत भक्त वृंद की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे की।